लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहेगा। दरिद्र को दान देने वाले को किसी बात की कमी नहीं होगी। उसकी ओर से आंखें बंद करने वाला अभिशापों का शिकार बनेगा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के अंतिम पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 28वें अध्याय के अंतिम पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक एक बार फिर मानो सच की प्रशंसा करता और बेईमानी, लोभ, लालच, ईर्ष्या और दुष्टता की निंदा करता है। वह विश्वासियों को इन दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह प्रदान करता है। कहता है, लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। यहां वह धोखेबाज तरीकों के प्रति सावधान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अमीर बनने की जल्दी करता है वह उचित रीति से धन नहीं कमाता, बल्कि धोखाधड़ी से ऐसा करता है। वह निर्दोष नहीं होगा और ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र नहीं बन पाएगा। श्रोताओ, घमंडी हो या फिर लालची लगातार झगड़े का कारण बनते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें, उनकी श्रेष्ठता को पहचानें। वे अधिकांशतः लोगों से सहमत नहीं होते और इसीलिए झगड़े हुआ करते हैं। वे खुद को आगे बढ़ाने और खुश करने को अपना बड़ा काम समझते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों से नफरत करते हैं, उनका विरोध करते हैं, अन्यों को तुच्छ समझते हैं। वे अपने सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और थोड़ी सी भी उपेक्षा, अपमान या चोट से अधीर हो उठते हैं। इस प्रकार लालची व्यक्ति की अतृप्त भूख उसे दूसरों के साथ संघर्ष में ले आती है और वह सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन कर बैठता है। अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर वह विघटनकारी और विनाशकारी बन जाता है। फिर सूक्ति ग्रंथ का लेखक उस व्यक्ति को मूर्ख कहता है जो अपने हृदय पर भरोसा करता है, क्योंकि सांसारिक, शारीरिक और शैतानी शक्तियां उस पर प्रबल रहा करती हैं और इसीलिए वह ईश वचन से अपने मूल्यों, नैतिकताओं और ज्ञान को विनम्रता पूर्वक ग्रहण करने के बजाय खुद पर भरोसा करता है। आगे लेखक कहता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो धर्मी फलने फूलने लगते हैं। श्रोताओ, जब दुष्टों का बोलबाला होता है तब अच्छाई पर बादल छा जाते हैं। सत्ता दुष्टों के हाथ में होती है और आम जनता की आवाज मौन हो जाती है। बुद्धिमान और समझदार लोग चुप रहना बेहतर समझ लेते हैं। भले लोग अपने घरों में छिप जाते हैं इस आशंका के साथ कि कहीं उनके अच्छे कर्मों के लिए भी उन्हें दंडित न कर दिया जाए। दूसरी ओर जब दुष्टों का विनाश होता है तो समाज फलने फूलने लगता है। धर्म परायण लोग निडर होकर अपने काम कर पाते हैं और सच की विजय होती है।
एक नाम प्रभु तेरो नाम, सत्य नाम प्रभु तेरो नाम,
एक नाम प्रभु तेरो नाम, सत्य नाम प्रभु तेरो नाम।
और अब आइए बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 27 पदों वाले 29वें अध्याय में भी सूक्ति ग्रंथ का लेखक यानी कि राजा सुलेमान बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच अंतर जैसे सामान्य विषय पर अपनी चर्चा को जारी रखता है। मूर्ख व्यक्ति के आगे बुद्धिमान को किस प्रकार पेश आना चाहिए, इसकी सलाह 29वें अध्याय के प्रथम 18 पदों में मिल जाती है। 29वें अध्याय के प्रथम 2 पद इस प्रकार हैं। जो व्यक्ति बहुत डांटे जाने पर भी हट करता है, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार नहीं होगा। जब धर्मी प्रबल है तो जनता प्रसन्न है, किंतु जब दुष्ट शासन करता है तो जनता करहाती है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ में कई स्थलों पर व्यक्ति के जिद्दी रवैये अथवा उसकी खट धर्मिता की निंदा की गई है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का विरोध करता और ईश नियमों का उल्लंघन करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे अक्सर डांटा जाता है लेकिन वह डांट को नहीं सुनता, इसके बजाय वह अपनी गर्दन को कठोर कर लेता है यानी कि जिद्दी हो जाता है। यहाँ उस तरह के व्यक्ति का वर्णन है जो ईश्वर के दयालु धैर्य पर विश्वास नहीं करता, वह ज्ञान को लगातार अस्वीकार करता और ईश्वर के खिलाफ अपने जिद्दी रवैये के कारण न्याय के प्रति भी उदासीन हो जाता है। वह सोचता है कि न्याय कभी नहीं मिल सकता, जबकि ईश्वर पर भरोसा और विश्वास मनुष्य को न्याय दिलाता है। फिर लेखक धर्मी लोगों द्वारा शासन को पूरे समुदाय के लिए हितकारी और दुष्टों द्वारा शासन को सबके लिए हानिकारक निरूपित करता है। धर्म परायण व्यक्ति जब शासन करते हैं तो वे सबके हित की बात सोचते हैं, जबकि जब दुष्ट सत्ताधारी होता है तो समुदाय और राष्ट्र दोनों को नुकसान पहुंचता है, अराजकता बढ़ती है और जनता की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लोग करहाने लगते हैं और अपनी नियति पर विलाप करते हैं। आगे 29वें अध्याय के 3रे पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, प्रज्ञा प्रेमी अपने पिता को आनंदित करता, किंतु जो वेश्या गमन करता वह अपनी संपत्ति उड़ाता है। श्रोताओ, जब संतान प्यार से जीती, अपने माता पिता का आदर करती और बुद्धिमानी से जीवन के सभी नियमों का पालन करती है तो वह हर किसी भी माता पिता के लिए खुशी का कारण बनती है। इसके विपरीत जब पुत्र वेश्या गमन में लग जाता है, वेश्याओं में अपना धन बर्बाद करता है तो वह माता पिता को दुखी करता है और खुद मूर्खतापूर्ण रास्ते पर चलता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वह निरा मूर्ख है। उसका अनुचित व्यवहार पिता को दुखी करता है, क्योंकि अपने बेटे को कंगाल बनते देख पिता का दिल एक शीशे की तरह टूटकर चूर चूर हो जाता है। आगे 4थे पद में लेखक एक बार फिर अच्छे और सुदृढ़ शासन का होना जरूरी बताता है। कहता है, राजा न्याय द्वारा देश को बनाए रखता है, किंतु जो अधिक कर उगाहता वह उसका विनाश करता है। श्रोताओ, राजा न्याय द्वारा देश की स्थापना करता है। एक राष्ट्र तभी शक्ति और प्रगति की उम्मीद कर सकता है जब उस पर न्यायपूर्वक शासन किया जाए। जब एक समुदाय या राष्ट्र देखता है कि दुष्टों को दंडित किया जाता है और उन पर लगाम लगाई जाती है, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता होती है और समझौतों का सम्मान किया जाता है, तब समाज में न्याय, विकास और आशीर्वाद के लिए एक आधार बनता है। इसके विपरीत जब न्याय का दुरुपयोग किया जाता, मसलन जब रिश्वत ली जाती है, तो समाज में कानून के सामने निष्पक्षता और समानता की नींव ही धराशायी हो जाती है। अमीर और कुटिल लोग समृद्ध बन जाते हैं और सामान्य जनता विलाप करती और कंगाली में जीवन यापन को मजबूर हो जाती है। राष्ट्र में कानून तो होते हैं किंतु वे लागू नहीं किए जाते। पक्षपात और अन्याय उन्हें निरर्थक बना देते हैं, जबकि स्वार्थी प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईमानदारी और नैतिक साहस की नितांत आवश्यकता होती है।
नित्य प्रेम से बोलूं मैं, बोलूं नाम प्रभु तेरो नाम,
एक नाम प्रभु तेरो नाम, सत्य नाम प्रभु तेरो
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि पोप फ्रांसिस को अब रात में मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं है और दिन के समय उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी की भी कम आवश्यकता है। उनका चलने और सांस लेने का इलाज भी बेहतर हो रहा है। संत जोसेफ के पर्व दिवस पर पोप ने ख्रिस्त्याग भी अर्पित किए। पोप के डॉक्टरों का कहना है कि उनके फेफड़ों का संक्रमण नियंत्रण में है, हालांकि समाप्त नहीं हुआ है। उनके नैदानिक विश्लेषण के मान सामान्य श्रेणी में हैं और पोप को बुखार नहीं है। उन्होंने अपने कल के दिन को इलाज प्राप्त करने, प्रार्थना करने और कुछ काम करने में बिताया। पुण्य सप्ताह के दौरान समारोहों की अध्यक्षता कौन करेगा, इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि पोप की हालत स्थिर है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर अगला अपडेट अगले सप्ताह से पहले आने की उम्मीद नहीं है। वैटिकन प्रेस कार्यालय शुक्रवार को और फिर सोमवार को पत्रकारों को कुछ सामान्य जानकारी देगा। पोप के स्वास्थ्य पर अंतिम अपडेट सोमवार शाम को आया था। उस अवसर पर वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा था कि पोप की हालत स्थिर है, श्वसन और मोटर थेरेपी की बदौलत थोड़ा सुधार हुआ है। प्रेस कार्यालय ने कहा था कि वे नाक की नलिकाओं के साथ उच्च प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग कम बार कर रहे हैं और कभी कभी उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। रात में वे नॉन इन्वेसिव यांत्रिक वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से ही रोम के जेमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। वैटिकन के हंगेरियन चैपल में आयोजित ख्रिस्त्याग की अध्यक्षता परमधम पीठे अकादमी ऑफ साइंसेस के चांसलर कार्डिनल पीटर टक्शन कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ख्रिस्त्याग अर्पित करने हेतु वैटिकन के सभी अफ्रीकी राजदूत एक साथ आए हैं। इस कार्यक्रम में वैटिकन के सभी राजदूतों को आमंत्रित किया गया है, जो बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे वैटिकन के ऐतिहासिक हंगेरियन चैपल में आयोजित है। ख्रिस्त्याग का आयोजन वैटिकन में अफ्रीकी राजदूतों के समूह ने किया है, जिसकी अध्यक्षता कार्डिनल पीटर टक्शन कर रहे हैं, जो परमधम पीठ अकादमी ऑफ साइंसेस के चांसलर हैं। घाना के मूल निवासी कार्डिनल ने एक दशक से अधिक समय तक वैटिकन में काम किया है। इस आयोजन की घोषणा करते हुए एक पत्र में अफ्रीकी राजदूतों ने कहा है कि यह ख्रिस्त्याग संत पापा के साथ प्रार्थना और आध्यात्मिक निकटता का क्षण होगा, ऐसे समय में जब उनका स्वास्थ्य विशेष ध्यान का विषय है। राजदूतों ने कहा कि वे चाहते थे कि यह ख्रिस्त्याग पोप के प्रति उनके स्नेह और सम्मान को व्यक्त करें और उनके धर्म सिद्धांत का पालन करने और दुनिया भर में सुसमाचार के संदेश के प्रचार में योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता को नवीकृत करें। पोप के स्वास्थ्य के लिए एक और ख्रिस्त्याग का आयोजन आज शाम 6 बजे साइप्रस, पोलैंड और लिथुआनिया के राजदूतों ने वैटिकन में किया है। यह ख्रिस्त्याग, जिसकी अध्यक्षता वैटिकन विदेश सचिव महादमदश पॉल रिचर्ड कलाघर करेंगे, रोम में येसु के पौत्रतम नाम को समर्पित गिरजाघर में संपन्न होगा। अलेपो में एक धर्मदक्ष और एक पुरोहित कुछ महीनों की शांति के बाद कई सप्ताह तक फिर से हुई हिंसा के उपरांत देश की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सीरिया में पिछले कुछ हफ्तों से हत्या, अपहरण, चोरी और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। दिसंबर की शुरुआत में बशर अल असाद शासन गिर गया था और 3 महीने बाद एक बार फिर अशांति भड़क उठी है। मानवाधिकार के लिए सीरियाई पर्यवेक्षक के अनुसार असद के सत्ता के हटने के बाद से 100 दिनों में लगभग 4,700 नागरिक मारे गए हैं। महीनों की शांति के बाद अल असद समर्थकों द्वारा सुरक्षा गश्ती दल पर घात लगाकर किए गए घातक हमले के बाद संघर्ष फिर से भड़क गया। बदले की कार्रवाई में सुन्नी इस्लामवादी नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले बंदूकधारियों पर लक्षित हमले करने का आरोप है। क्रिश्चियन मीडिया सेंटर से बात करते हुए अलेपो के लातिनी पल्ली पुरोहित और प्रेरितिक विकर ने सीरिया में ख्रिस्तों की स्थिति और शांति लाने के उनके प्रयास के बारे बतलाया। अलेपो के फादर बहजात कराकाच ने अलेपो और सीरिया में माहौल को पूरी तरह से अनिश्चित बताया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को बेहद मुश्किल बताते हुए कहा, शासन के पतन का मतलब यह नहीं है कि सामान्य जीवन वापस आ जाएगा। लोग डर में जी रहे हैं और भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि फादर काराकास ने कहा, जो थोड़ी निश्चितताएं थीं, वे अब खत्म हो गई हैं। दिसंबर में असद को सत्ता से हटाए जाने, जिसके बाद 13 साल का खूनी गृह युद्ध खत्म हो गया, के बाद से यह सबसे भयंकर हिंसा है। अलेपो में लातिनी प्रेरित विकर धर्माध्यक्ष हन्ना जनाफ ने जोर देकर कहा कि विभिन्न समूहों के बीच ये झड़पें शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अतीत की वापसी की लालसा रखते हैं, वे भूल जाते हैं कि इतिहास कभी पीछे नहीं जाता, यह केवल आगे बढ़ता है। देश में ख्रिस्ती अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या गृहयुद्ध के बाद सीरियाई आबादी का लगभग 2% है, लेकिन धर्माध्यक्ष जनाफ और फादर काराकाच दोनों ने तर्क दिया कि मेल मिलाप करने में उनकी उपस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। फादर काराकाच ने ख्रिस्त समुदाय को निष्पक्ष बताया, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी भी लड़ाई नहीं की या हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने बतलाया कि इससे उन्हें अभी भी सीरियाई लोगों के बीच विश्वसनीय माना जाता है और इस निष्पक्ष दृष्टिकोण का मतलब है कि ख्रिस्ते अलग अलग समूहों के बीच संवाद के लिए एक पुल बनने में सक्षम हैं। चूंकि सीरिया अब दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक है, जहां लगभग 15 मिलियन लोगों को स्वास्थ्य सेवा सहायता की आवश्यकता है, इसलिए पल्ली पुरोहित ने ख्रिस्ती समुदाय को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए एक चिन्ह बने। ऐसे देश में जहां धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है और कट्टरता बढ़ रही है, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में एक परिसर के क्षतिग्रस्त होने से उनके 2 कर्मचारी मारे गए हैं और अन्य घायल हो गए हैं। घटना की परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं। हालांकि गजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइली हमले को दोषी ठहराया और बतलाया कि 5 गंभीर रूप से घायल विदेशी कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।